ہمارے آنے سے ڈرتا ہے، لیکن جب میں آیا ہوں اس وقت کی دیش کی جو تقریر ہے اس کے بارے میں کچھ اپنے چند خیالات کے سامنے رکھوں گا. میرا ارادہ یہ نہیں کہ پھر وہ ایک یدھ کی ہوا دیش میں ہم تیار ہیں، یہ ارادہ میرا نہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ ارادہ کوئی بھارتیہ کا ہو نہیں سکتا. بھارتیہ شاسن نے اپنا آدرش پہلے کے لیے رکھا، آج بھی ہے، میں مانتا ہوں آنے والے سالوں میں وقتوں میں بھی یہی ان کا آدرش رہے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی دیش کے ساتھ ایک دشمنی کا ارادہ رکھ کے اپنا کاروبار چلائے، وہ پاکستان ہو یا چین ہو اور کئی دوسرا دیش ہو. جب سے ہم آزاد ہوئے اسی وقت یہ ہم نے ظاہر کیا، نہ خالی ظاہر کیا لیکن ہماری جو نیتی چلی وہ نیتی اسی طرح چلی. کوشش یہ رہی کہ جو ہم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے تھے ان کی ہی دوستی بنانے کی کوشش کی، اور میں مانتا ہوں یہ ٹھیک تھا. ایک وشال دیش تھا، صدیوں کے بعد آزاد بنا تھا، قادیم بنا تھا، اور اس دیش کے سامنے اتنی مصیبتیں اتنی سمسیائیں تھی اور آج بھی ہیں کہ ہماری پوری طاقت وہ سمسیائیں حل کرنے کے سامنے ہم لگا رہے ہیں. کروڑ جنتا کی غریبی ہے اور کتنی باتیں ہیں، میں ان باتوں کا ذکر کرنے لگوں تو میرا پورا وقت اسی کام میں چل رہا ہے. تو ان کاموں میں ہماری شکتی ہم لگا دے، یہ ارادے سے ہم نے ہمارا کام شروع رکھا، اور اسی کے لیے ہم نے یہ بھی مانا کہ دنیا میں آمن رہے گا تو یہ ہمارا کام سفل ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے جلدی سے جلدی. اس سے پہلے سے ہم نے ہماری ودیشی نیتی کا یہ بنیاد رکھا کہ ہم سبھی راشٹروں کے ساتھ دوستی سے رہنا چاہتے ہیں، مترتا سے رہنا چاہتے ہیں، محبت سے رہنا چاہتے ہیں، نہ دشمنی. اور یاد ہوگا کہ ہمارے نزدیک کے ہم جیسے ہی پراچین دیش ہے چین، جو ہم کوشش کر ان کی پرانی سنسکرتی ہے، ہماری پرانی سنسکرتی ہے، ہم وشال دیش ہے وہ وشال دیش ہے، وہ چین ہے ہم پراچین ہے، دوستی تو رہے ہمارے راشٹر کے نیتا نے ان کے لوگوں کے پرتی، نیتاؤں کے پرتی دوستی رکھی، ہم نے عزت کی ان لوگوں کی، اور جنتا کے پرتی تو کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی. بھارتی جنتا کسی جنتا کے بیچ کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی، کسی دیش کی جنتا کسی دیش کی جنتا کے ساتھ دشمنی ہو نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے ہم نے نعرے لگائے، میں نے آج صبح ایک سوالے کہتے ہوئے یہ بات ذکر کیا احمد آباد میں کہ ہم نے نعرے لگائے دیش میں چینی ہندی بھائی بھائی، میں نے لگایا نعرے، آپ نے لگایا، تو جو راشٹر کی ایک بھاونا تھی کہ ہم ایک دوستی سے رہے، لیکن یہ نظر آیا کہ اتنا کافی ہے کہ ہم ہمارے دل میں محبت رکھے اور دوسرا اپنے دل میں جہر رکھے، بالکل نہیں گنجا جا رہا. راشٹر کی نیتی تو چلتی ہے، یہ انوبھو ہمیں رہا. میرے من میں خیال آیا، میں نے صبح کہتے وقت میرا انوبھو بتایا کہ 1947 सब की बात है। जब ये पूरा राज एक था, गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो वो पूरे राज्य के प्रमुख नाते में चौन लाए आए थे बम्बई सांता क्रूज के एयरफील्ड पर। तो मैं उनकी वो मेहमान थे, मैं वो अतिथि थे, मैं गृहस्थ था, मेरे खुद के नाते और आज सबके तरफ से मैं वहां गया। मैंने मेरे हाथ में फूल रखे थे और वो जैसे अपने जहाज से बाहर आए तो उन्होंने अपना हाथ उठा उठाया और कहा कि हिंदी छिनी भाई है। मैं भी गृहस्थ था, अतिथि का सम्मान करना था, तो मैंने ही बड़े बड़े जोरों से हाथ ऊंचा किया और कहा चीनी हिंदी भाई है। मेरे हाथ में फूल थे और प्रामाणिकता से कहता हूं कि दिल में मोहब्बत थी उनके लिए। लेकिन 3 साल के बाद ये अनुभव आया कि हमारे हाथों में उनके लिए फूल थे और दिल में मोहब्बत थी, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए दुश्मनी थी और हाथ में हमारे लिए संजल। ये दुनिया, ये दुनिया का नमूना नजर आने के बाद याद उठा दे, क्योंकि इस देश में अपनी आजादी बड़े मेहनत से मिला है, किसी के मतदान से नहीं मिला है, किसी के दुश्मनी से नहीं मिला है। कि इस देश में सरकार अपने राष्ट्र के नेताओं के नेतागिरी के नीचे जनता के मन में ऐसी आवाज उठाई, घर घर में स्वराज का आवाज पहुंचा दिया और ऐसी हवा हिंदुस्तान में पैदा हुई कि अंग्रेजों को यह पता चला कि इस देश के भूमि पर राज हो सकता है लेकिन देश की जनता के दिलों पर राज नहीं। यह पता चला तब अंग्रेज यहां से चले गए, खुशी से चले गए नहीं, यहां की एक ऐसी शक्ति बनाई गई थी हमारे देश के नेता गांधी जी, पंडित जी और उनके पहले के जो नेता बने, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस देश को स्थान के लिए तैयार किया। तो इस शक्ति से मिलाई हुई आजादी कुछ खतरे में आए तो देश दुखी होता है, जैसा जख्मी शेर बन जाता है वैसी वैसी दिल की और दिमाग की हवा में हिंदुस्तान की हिंदू से बात रखने लगे। और उसके बाद दूसरे जो पड़ोसी थे, इन लोगों की यह भावना है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या भावना है हमें समझना चाहिए। मैं कुछ पहले ही कहा कि कुछ युद्ध की हवा पहले आपको यह कहना चाहता हूं, पहले कह दूं तो अच्छा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर उनकी कुछ लश्करी हिलचल है, लेकिन मैंने मानता कि पाकिस्तान की शक्ति अब ये होगी कि फिर से वो दोहरा किया गया थे जो पहला अनुभव किया जो करने के लिए चला। तो घबराहट की भावना मत मन में रखिए, वो आते हैं वो सीमा के पास, उन्होंने हिलचल की है, वो संख्या में आए हुए, हम बड़ी जागरूकता से देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी अभी वो कुछ करेंगे, और फिर करेंगे भी ये तो उनको पता है कि भारत की संख्या कितनी तेज बनते हुए भारत का जवान कितना तेज हो रहा है, लेकिन ये हवा उठाने के लिए नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके मन में ये पूरी तस्वीर बनाना चाहता हूं कि देश की रक्षा की तैयारी की मानी क्या होती है, जिम्मेदारियां क्या होती है, उसके लिए हमें हमेशा के लिए क्या करना होता है, और आज की जो मुसीबत नजरों के सामने आती है वो मुसीबत का अंदाजा क्या होता है, वो आपके सामने रखना चाहता था। क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें जो है तो मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी संदर्भ में, इसी वास्तव में मेरा सामने रखना चाहता कि क्या उन लोगों की हमारे प्रति क्या भावना है, वो क्या समझते हैं हिंदुस्तान, उनके कई लोगों का ख्याल ये है। ये अलग अलग जबानों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग मजहबों का ये ऐसा बना हुआ देश है, ये टूटने वाला देश है, ये उनकी भावना है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक पक्ष का राज होकर चलता है, वो कम्युनिस्टों का आज का अनुभव है, और पाकिस्तान में ये भावना है कि एक धर्म के लोग को तो राज चलता है। इस वजह से जब वो हिंदुस्तान की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये पूरी दुनिया की जबानी हिंदुस्तान में बोली जाती है और पूरी दुनिया के मदद से लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। ये चलने वाली चीज नहीं, बनने वाली चीज नहीं, सीखने वाली चीज नहीं, ये भावना वहां के जो सोचने वाले वहां के जो लोग हैं उनके मन में लगे, लेकिन गलत ख्याल है उसका। ग्रस्त वो जो उन्होंने कार्रवाई की और जिस हिसाब से वो हिंदुस्तान की तरफ आने की उन्होंने कोशिश की, जब सोचने लगता है मन, जब मैं कदमों से बात करता हूं, लश्करी कदमों से बात करता हूं कि किस हिसाब से लोग आए, तो कुछ अकल की बात नहीं मालूम होता। उन्होंने जो कुछ किया है वो कुछ अकल का मामला नहीं होता, लेकिन फिर भी किया ये तो सही है, फिर क्यों किया, इसलिए किया कि उनको ये लगता था कि अब ऐसे ऐसा मौका इस देश में है। अब उस वक्त याद अपने मन में लगता है क्या हवा थी हिंदुस्तान, उनका तो है, वो तो चलाना चाहते, वो कश्मीर का कश्मीर की समस्या वो चलाना चाहते, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान उस वक्त की जो तस्वीर है वो अब अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश की। उस वक्त ऐसी हवा देश में थी कि यहां अकाल बना हुआ, लोगों में नाराजगी थी, जुलूस निकलते रहते, आपस में कुछ बातें चलती, बंबई बंद की हवा थी, बंगाल बंद की हवा थी। उस वक्त के आप उस वक्त के अखबार निकाल भी देखिए कैसा हवा थी। पहले वक्त संत फतेह सिंह ने जाहिर किया था कि पंजाबी युवा लेने का नहीं तो मैं आमरण होटल शुरू कर देना। फांसी की बात उनको ये पता चला होगा कि ये ऐसा मौका है जिस वक्त हिंदुस्तान को और एक सता दो, लेकिन क्या हिंदुस्तान ने लिखा है, हिंदुस्तान ने लिखा कि हाँ सब हवा थी, बंद की हवा थी, सब की लोकशाही है या जनमोलियत है, हरियत आदमी का हक है क्या क्या करे न करे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की सेना हिंदुस्तान की तरफ अपना कदम उठा रही है तो पूरी बन की हवा बंद हो गई और पूरा हिंदुस्तान 45 करोड़ जनता एक आदमी के नाते पड़ी रही दुश्मन के सामने, और एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि आपस में कितने ही झगड़े हो लेकिन दुश्मन के सामने हम एक बन सकते। ये अनुभव हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा था और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, लेकिन मैं आपकी अनुभव यह कहना मेरा फर्ज कि हिंदुस्तान की तस्वीर हमें यह बनानी होगी कि फिर दुश्मन को कभी यह मौका न मिले कि फिर भी वो सोच रहे कि अब संकट का समय है और हिंदुस्तान की जनता टूटी फूटी। हम जब दुश्मन आता है तो एक बनते हैं, ये सही बात है, ये हमने दिखा दिया है, लेकिन क्या हमें एक बनने के लिए हमेशा दुश्मन ही आना चाहिए। दुश्मन हमारे देश में न आए इसके लिए भी हमारे देश की जनता की एकता की प्रति हम क्यों न करें, क्यों आज कुछ करेंगे ये बात नहीं आ सकेगा, करे न करे मैं चाहता हूं क्यों न करे और मेरा अंदाजा भी है क्यों न करे, लेकिन फिर भी ये भी अंदाजा है, ये आपके सामने रखना मेरा फर्ज है कि पाकिस्तान की बात अलग है लेकिन आज पाकिस्तान और चीन मिला जुला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान क्या करेगा ये समझने के लिए चाइना का क्या इरादा होगा ये हमें समझना है। अब चाइना की बात आप देखिए क्या बात, 1962 में उस देश की और हमारे देश की बड़ी मित्रता होने के बावजूद उन्होंने वो हमला किया। आए दो तीन हफ्ते वो तवांग में आए, बमजिला में, सुशीला में आए, बमजिला तक पहुंचे और एक दिन ऐसा संदेशा उनका जो आपसी वादों को बुला रहे, जो जानकार लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, वो सोचने लगे कि भाई ये आए थे क्यों और फिर चले क्यों गए। आए थे तो कुछ हिमालय की ठंडी हवा के लिए तो नहीं आए, फिर यहां आए बामजिला तक आए और फिर आ तक भी आप लौटे गए इरादे क्या, क्योंकि ये बातें सोचनी पड़ती हैं कि इनके इरादे क्या होना है, दुश्मन की तैयारी का हिसाब लगाते वक्त उनके इरादे क्या होते हैं इसका पहला हिसाब लगाना होता है। तो हम इस काम में लगे कि क्या इरादा चीन का क्या हो सकता है। तो मेरे नजर से चीन के तीन इरादे हो सकते थे उस वक्त और वो इरादे आज भी है, क्योंकि वो हटे हटे और जाके ऐसे जगह बैठे हैं पूरी 2000 मील लंबी सीमा पर कि जहां से वो जी चाहे तो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ऐसे विचार कर रहे हैं। दो साल तीन साल बैठे हैं, पता नहीं और कितने साल बैठने का इरादा नहीं था, लेकिन क्या चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि दुनिया को वो दिखा ले और एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों के सामने ये दिखा दे, जमाना चीन का है भारत का नहीं। दूसरे युद्ध के बाद जो दो बड़ी बातें बनी दुनिया में, एक हिंदुस्तान की आजादी और चीन की इंकलाबी जो कम्युनिस्टों ने बनाया, तो उनके सामने सवाल यह है कि चीन तो चाहता है पूजा खाली एशिया में नहीं दुनिया में चाहता है, अग्रसर रहना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है दुनिया का। तो दुनिया का मुखिया बनने वाला पहले अपना जो पड़ोसी है उसी का एक नमूना बदल दे, वो तो कोशिश करे। तो छोटे छोटे जो राष्ट्र एशिया में रहने वाले हैं उनके सामने वो दिखाना चाहता था कि चीन एक शक्तिशाली देश है, लश्करी दल से भी शक्तिशाली देश है और चीन का चलने वाला है हिंदुस्तान का नहीं, ये पहला हिस्सा उनके मन। दूसरा हिस्सा ये था, उन्होंने ये देख लिया कि जब हिंदुस्तान ने ये बात रखी कि वो सोवियत रशिया से दोस्ती रखना चाहते हैं, अमेरिका से भी दोस्ती रखना चाहते हैं, चीन से भी दोस्ती रखना चाहते हैं, तो वो तो चाहते थे कि चीन का चलना हो तो हिंदुस्तान में दूसरा किसी का नहीं मानना, अपना ही मानना चाहिए। तो एक दफे ऐसे उनको इस मौके में ऐसा एक धक्का दे कि जिससे उन्होंने इतना नीति अपनाई है कि मैं किसी के गुट में नहीं जाकर बैठूंगा, तो ऐसी स्थिति पैदा करे कि वो गुजरात में कह दे कि हाँ मैं सोवियत रशिया की तरफ भी हूं या अमेरिका की तरफ भी हूं और फिर हिंदुस्तान को अकेला बनाने की यह कोशिश। और तीसरी बात यह थी कि हिंदुस्तान ने 15-16 साल अपना इकोनॉमिक प्लानिंग का जो काम था, आर्थिक विकास की जो योजनाएं थी वो पूरा करने का जो काम जारी रखा था, वो काम हटाने के लिए हिंदुस्तान के कंधों पर हिंदुस्तान के स्तर पर और एक बोझा रखना था हमेशा। जब ये लश्करी तैयारी करने का काम होता है, पहले तो हम लोग अपने देश में 1962 से पहले तो कई करीब 300-350 करोड़ रुपया हम खर्च करते थे, अब तो हम 900-1000 तक पहुंचे, तिगुना हम ज्यादा खर्च करने लगे। इसके मानी कि यह साफ है ना कि ये बोझा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हमेशा हमें उठाना होगा और ये बोझा हिंदुस्तान के सब रखने के बाद फिर तो हिंदुस्तान अपने तरक्की का काम कैसा कर सकता है वो देखने की कोशिश। मेरे नजर से ये तीन इरादे थे और अंदर ही से ही हिंदुस्तान को इतना दुर्बल बनाया जाए
कि फिर चीन का काम आसान हो जाता है। उस वक्त ये कामयाब नहीं बना, उन्होंने पहला काम तो किया, उस वक्त जो चीज बनी उससे एक हमारी तकदीर कहीं जगह थोड़ी हट गई, लेकिन इतनी भी बात साफ थी कि पूरी चीन की सेना और पूरी हिंदुस्तान की सेना इनका संघर्ष नहीं हुआ। कुछ एक डिवीजन दो डिवीजन जो पहाड़ों में जो फंसी थी उनके साथ उनका मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन पूरी हिंदुस्तानी सेना की ताकत और पूरी चीन की सेना की ताकत जो वहां आ सकती थी इसका संघर्ष नहीं हुआ था। तो एक दुख की बात लगी रही थी हिंदुस्तान की सेना के मन में कि फिर कभी मौका मिल रहा था। अब 3 साल उन्होंने ये देखा कि हम हटे तो नहीं दिल से, लेकिन फिर जोरों से तैयारी भी लगी। जहां जहां से चीज मिली अपने अपने हिसाब से मिलाने की कोशिश, अपना ही देश का जो उत्पादक सामर्थ्य होता है वो काम में लाने की कोशिश, और ऐसी एक हवा रही इस देश में कि हम मरते रहेंगे टूटते रहेंगे लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुझे याद जब मैं 1962 में लोकसभा में निवेदन किया था कि जब मैं एक निजी अनुभव आपको कह रहा हूं कि जिस नेता के नीचे ये अध्यक्ष बन रहा था उस नेता की हिम्मत क्या थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब मैं नवंबर के सही 20-21 तारीख को जाकर पहुंचा दिल्ली में तो तबियत पूरी एक ऐसी हवा बनी थी जो बंदीला तक कहां पहुंचे थे कब तेजपुर में आएंगे पता नहीं था, ऐसी हवा थी। उसी रात को मैं रिपोर्ट करने गया पंडित जी के सामने कि आपने बुलाया था मैं हाजिर हुआ हूं दिल्ली। तो रात को 10 बजे जाकर मिला और अपने काम में लगे हुए थे, मुझसे पूछने लगे आ गए, मैंने कहा कहाँ पहुंचा था, पता चला क्या क्या हो रहा, मैंने हाँ पता चला। फिर कहने लगे कि हाँ यहां पहुंचे हैं इन्होंने धोखा दिया है, इनके हाथ में हथियार भी हो सकते हैं हमसे ज्यादा, लेकिन हमारी देश की 45 करोड़ हाथ में बंदूक भी न हो तो अपने लाठी काठी से लड़ेंगे, लेकिन इन लोगों से लड़ते रहेंगे हम, इनको बराबर उसको सिखाएंगे बड़ा, यह भावना ये हिम्मत की देश थी और वो हिम्मत से कुछ काम बढ़ता रहा चलता रहा। आज चीन वालों ने ये देखा है कि ठीक है ऐसे नहीं दुखते कोई दूसरा रास्ता निकलना चाहिए। अब ये रास्ता दूसरा ये है कि अपने पंजे में उन्होंने पाकिस्तान वालों को लेने की कोशिश की। पहला हिसाब किया आयुष साहब ने अमेरिकन युद्ध का साहित्य लिया, अब अमेरिका के युद्ध साहित्य के साथ ही साथ अब चीन का साहित्य आने लगा। अब वो हिसाब जिन देशों की मदद वहां आती है पश्चिमी, अब अमेरिका भी सख्त मदद नहीं दे रहा है ऐसा उनका कहना है और हम मानते भी नॉन लीथल कुछ देते हैं जो डायरेक्ट काम में नहीं आता लड़ाई के, ऐसे कहीं हथियार देते हैं तो जो कहते हैं कि जो हम आपको देते हैं वो हमें देते हैं, ठीक बात मैं समझ सकता हूँ, कम से कम मैं कुछ इतराज से नहीं बन सकता। तो अब चीन का साहित्य उनके पास आने लगा, इरादा क्या है चीन का, इरादा ये है कि वो ये चाहते हैं कि अब हमारी उनकी सीमा पर रहने वाले जो देश है वो देश आपस में लड़ते रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये सीधी सादी जो बात है, ये सीधी सादी बात हमारे पाकिस्तान के प्रमुख आयुष खान साहब के कैसे समझ में नहीं आते, मेरे समझ में नहीं आते। देखिए हिसाब के साथ जाहिर है इतिहास में जो पहली जो कुछ गलतियां होती है उसे दूसरे में कुछ न कुछ सीखना तो चाहिए। हम हिंदी चीनी भाई भाई करते तो क्या नतीजा हमें निकला जाहिर है। चल बात यह हमसे हुई, आज बात इंडोनेशिया में क्या होगी सुखान मसाल से पूछिएगा तो उनके रोजगार का नमूना होगा। जो कल हमारा हुआ, जो आज इंडोनेशिया का हो रहा है, वो कल परसों पाकिस्तान का हो रहा है। खास बात इन लोगों की आदत है, ये चीज जिस तरह से आज दुनिया में अपना काम करना चाहता है, ये इस तरह से जाना चाहता है कि वो क्योंकि वो हत्या इस रास्ते में। देखिए सब पूरी दुनिया की तस्वीर देखिए, क्योंकि ये सब बातें समझने से पहले दुनिया की सब तस्वीर नजर में आनी चाहिए। 10-15 साल से पहले यह हवा थी कि अमरीका और रशिया का कुछ युद्ध होगा, और आज की दुनिया जो नॉन अलाइंड पर नहीं मानती वो दुनिया इन दो गुटों में बांटी गई है, क्योंकि एक कहता है कि कुछ डेमोक्रेटिक रूप का गुट है, दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक है, यह सोशलिस्ट है, इसमें बांटी गई थी। हवा ये थी कि ये दोनों की तब तक लड़ाई होने वाली है, लेकिन दोनों भी अपने मन में समझ गए हैं कि जिस तरह के शस्त्रों की उत्पत्ति होती है आजकल, उसकी लड़ाई की बात जो छेड़ गई और उसमें से आपकी लड़ाई शुरू हो गई, तो लड़ाई का अंत देखने के लिए लड़ाई शुरू करने वाले देश नक्शे करने वाले ये हिसाब उनको पूरा बदलना है। इसलिए आज कितनी ही तैयारी होते हुए अमरीका अपने मन में समझ गया है कि न्यूक्लियर लड़ाई शुरू करना उनके हित में नहीं है, न रशिया के हित में। रशिया समझ गया है कि न्यूक्लियर लड़ाई शुरू करना न उनके हित में है, न अमरीका के हित में, न दुनिया के हित में। तो ये लड़ाई का तैयारी करने वाले बड़े जो नेता देश थे, उनकी हमेशा तैयारी होते हुए भी एक आमन की हवा दुनिया में पैदा हो रही है। अब ये तीसरा नमूना तैयार हो गया है चीन में, जो चाहते हैं कि दुनिया में लड़ाई हो, और जो कोशिश चलती है जहां जहां मौका मिले वहां वहां आग लगाने की उनकी तैयारी होती है। जो आजकल जो चीन में हो रहा है, क्या मानिए ये कल्चरल रेवोल्यूशन की बात चली है, वहां जिस तरह की कल्चरल रेवोल्यूशन अंदर की बात होती है तो अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक तरह से हम दुनिया में अकेले पढ़ रहे हैं इस भावना की अपनी तैयारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुछ आपस में झगड़ा है तो कौन प्रमुख बने उस राष्ट्र का, अब बने या मास्टर तुम के मृत्यु के बाद, वैसा कुछ एक झगड़ा तू अब तक माओ ऐसा कुछ झगड़ा चला है, ऐसा कई लोगों का ख्याल है। मैं इतना आसान ये बात नहीं मानता। माँ और साथ की यह तैयारी है तो वो समझते हैं कि वो दुनिया में अकेले पड़े और अकेला पड़ने वाला आदमी गुस्से से कोई भी चीज कर सकता है। उन्होंने अपने देश में एक ख्याल के लोग नजदीक जाने की तैयारी की है, और उनके नजरों के सामने जो स्टालिन का बना रशिया में ऐसा अपना न बने वो ख्याल में वो लगा हुआ है, और इसलिए एक लश्करी नजर से एक देश ऐसे ऐसे स्थिति में ले जाए कि जब कभी जो मौका है तो देश की तरफ से वो लड़ाई का जमाना पैदा कर सकते हैं, अपने देश में ही नहीं दुनिया में। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि चीन वाले को समझना है तो चीन वाले बड़े होशियारी से काम करते हैं, इतने तैयारी होते हुए भी आप कहेंगे कि उनको लड़ना ही है तो फिर वो पाकिस्तान वालों को क्यों कहते खुद ही क्यों नहीं लड़ते, ऐसा सवाल उठता है मेरे मन में उठाता, जिसका जवाब जैसा मैंने खुद के लिया है ऐसा मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। जवाब साफ यह है, बात यह है कि ये चीनी वालों की जो नीति है, उनकी जो फिलोसफी है, माओ की नीति जो है, उनकी जो फिलोसफी है, उसे एक बात साफ होती है कि वो राजनीतिक क्षेत्रों में कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करें, कैसी ही एडवेंचरस नीति अपनाएं, लेकिन लश्करी क्षेत्र में वो कभी एडवेंचरस पॉलिसी अख्तियार नहीं करता। अब देखिए वहां भी बात आती है, वो वियतनाम में कहा जाता है कि नॉर्थ वियतनाम का और चाइना का बहुत कुछ है। मैं वियतनाम के सवालों के बारे में उनके मेरिट डिमेरिट पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं खाली डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कि इतनी बात होते हुए भी आज तक नॉर्थ वियतनाम के भूमि पर एक भी चाइनीज सोल्जर नहीं है। लोगों हैं बड़े रियलिस्ट है, ये मृत्यु क्षेत्र में क्या करना, कब क्या करना, कितना करना, कितना नहीं करना, इस हिसाब से रहते हैं। इसलिए जब उनका काम ऐसा ही चलेगा कि हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना हमेशा लड़ते रहे तो चीन के हित में है, वो भी हो जाए। तो इसलिए जो मैंने पहले कहा कि अब पाकिस्तान अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकता, वो तो पूरे समझ रहे, लेकिन भरोसा इस बात का नहीं आता कि ये चाइना वाले जब तक वहां बैठ के अपनी चलाते हैं और उनको फंसाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान वाले फंस जाएंगे। यह भय है। और इस नजर से जो महत्व की बात मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता था वो ये, यह पाकिस्तान और चीन का संकट बहुत देर तक रहने वाला है हमारे देश का। ये कुछ जल्दी से खत्म होने वाली चीज नहीं, एक महीने में कुछ नहीं किया इस साल तो फिर अब छोड़ जाए दो साल, ऐसी बात नहीं होगी। हमेशा हमें जागृत रहना होगा। और इसकी मानी यह है कि सुरक्षा की तैयारी दो तरह से जो होती है, एक अपनी सेना की तैयारी करने के रूप से, अपना जो कुछ सामान है वो सामान जारी रखने के काम से, और दूसरा यह है कि हमारे देश की जनता का जीरो दिमाग तकरीर हम किस तरह से रखें, ये बड़ी महत्व की बात है। आखिर वहां का जो सैनिक लड़ता है वो आजकल की लड़ाई में इस तरह से लड़ता है, अपने ही बहादुर से नहीं लड़ता था। आज की हिंदुस्तान की सेना और पुरानी हिंदुस्तान की सेना में फर्क है। मैं वो क्या आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तरह से आप हिंदुस्तान का 1000 साल का इतिहास, 1000 साल का इतिहास देखिए। मैं तो मानता हूं कि एक नजर से ये 1000 साल का इतिहास हिंदुस्तान के खिलाफ आने वाले आक्रमणों का इतिहास, कभी वो खैबर घाटी से आए, कभी घोरी आए, लोबी आए, मुगल आए, फिर आना शुरू हो गया समंदर से, कभी जाचा आए, कभी पोर्टुगीज आए, ट्रेन जाए, आखिर अंग्रेज आए। लेकिन एक बार आगे मानना होगा कि हमारे देश में बहादुरों की कमी नहीं थी। हम बड़े हिम्मत से कहते हैं, अभिमान से कहते हैं कि हमारे यहाँ राजपूतों की जमात है, सिखों की है, मराठों की है, राणा प्रताप हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया, सब है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक का पूरा ही बात हम निकलते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जबीर जबीर 1000 साल के इतिहास में हिंदुस्तान के खिलाफ लश्करी आक्रमण होता रहा, तब लश्करी आक्रमण सफल होता रहा और हम जीते रहे हटके देखो। ये बात साफ हमारे आज की सबक सीखना है तो क्या कमी की पहले इतिहास में हमें सोचना है। हम कम बहादुर नहीं, क्या समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त कम बहादुर थे, क्या हिंदुस्तान के राजपूत कम बहादुर थे, क्या सिख कम बहादुर थे, या मराठा कम बहादुर थे। इतनी बहादुरी होती हुई, इतनी परंपराएं होती हुई, इतना प्राचीन देश छोटा हुआ, छोटे दाचा है, थोड़े अंग्रेज आए, थोड़े मुगल आए और उन्होंने सदियों तक हमारे देश में अपना राज बनाया। अच्छा क्या कमी है हमारे, मैं कहूँ आपको जब जब हमारे देश के खिलाफ कई जाति का आक्रमण होता रहा तब हम राजपूत राजपूतों से लड़ते रहे, सिखों से लड़ते रहे, मराठा राजपूतों से लड़ते रहे या राजपूत सिखों से लड़ते रहे, दुश्मन से हम लड़ते रहते। हम राष्ट्र नहीं थे, हम छोटी छोटी जमातें थे, छोटे छोटे राजा। वो उत्तर प्रदेश से आया था, वो गुजरात से गया था, वो मुंबई से गया था, वो केरला से आया था और वो पंजाब में लड़ता रहा, पंजाब की सीमा की रक्षा के नहीं भारत की रक्षा का, और पंजाब की भूमि की रक्षा के लिए जो लड़ता रहा वो पंजाबी का खून नहीं वहां बहा, ये हिंदुस्तानी का खून वहां बहा रहा है। ये नई शक्ति हिंदुस्तान की है, ये नई शक्ति हिंदुस्तान की है। हम नए राष्ट्र जो नई शक्ति हमारे जीवन में पैदा हुई है वो हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में हमें चालू रखनी चाहिए, पक्के रखनी चाहिए, ये हमारी शक्ति है। और फिर दूसरी बात, जो लड़ने वाला वहां सैनिक लड़ता है उनकी ये पता है, अब वो पहले की दिनों की हवा नहीं रही, कि वहां के सैनिक अलग थे और सेना अलग थी और जनता अलग साफ, लेकिन आज वो बात वह लिखने वाला ये मानता है कि मेरा भाई और कोई खेत में काम करता होगा, या कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, या कोई कचहरी में बाबू होगा, लेकिन उनको इज्जत होगी कि मेरा भाई सीमा पर लड़ता है। उनको पता है कि वो वहां लड़ते रहेगा और आखिर मरने होगा तो मरेगा ही, क्यों कि उसके भाई बहन बच्चे खुशहाल है। और उनको यही पता था यहां से पराजित होकर पीछे जाएगा वो तो उसका शर्मिला मुंह गहराई से कोई देखने वाला वहां मिलेगा नहीं, वो कहेंगे कि बेटा देश की रक्षा के लिए गया था वहीं तू काम में आता तो अच्छा, पराजित होकर पीछे आया आपके वतन पर नहीं। ये भावना लोगों के मन में तैयार हो रही थी, ये एक नई शक्ति हमारे देश में आ तो ये हिसाब मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, देश की रक्षा की एक लंबी बात नजर आ रही है। फिर एक साल की मेरा कुछ तकलीफ हो गई और फिर अब भूल जा रहा है, लेकिन नजर में आता है कि ये कुछ सालों के लिए रहेगा और कुछ सालों के लिए रहेगा, तो उसके लिए घबराहट से डर हो या ऐसा कोई एक्साइटमेंट जिसे कहते हो मन में ऐसी कोई निकल नहीं पड़ी आराम, एक एक शांतता एक जीरो राजता जिसे कहते हैं, उससे हम ये सवाल पूरे समझिए और हमारा जो गेम देश किसान के लिए है देना है तो देने की हम दिया है। इसकी मानी नहीं तो मैं चाहता कि हरिए का बहुत आवश्यकता है। मैं ये भी नहीं कहने के लिए आज मैं आपको कुछ डिफेंस फंड का कुछ कुछ एक रुपया अलग रुपया जो वो ही मांग रहे हैं, वो देव और जुनद हो वो अलग बात है, वो शासन और आज देश के शासन है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो तस्वीर देश की हम दुनिया के सामने रखे, क्योंकि देश की रक्षा तीन तरह से हो सकती है। आज सुबह मैं कहता था कहते आज हो तो बुरा काम काम करा कि तीन तरह से देश की रक्षा करते हैं। एक जब देश की देश के प्रति और देश के खिलाफ दुश्मन अपनी सेना का आक्रमण करता है तो उसका मुंह से उतार देते हैं तो भारत देश मारे। दूसरा रास्ता यह होता है कि आने वाली सेना को हटाने के लिए उनके देश में जाकर उनको वहां मुंह तोड़ देते हैं। ये दोनों रास्ते हमने देखे, लेकिन तीसरा रास्ता और दूर दृष्टि से देखने वालों को यह मालूम होगा कि यह रास्ता हमें जारी रखना होगा इस देश में, क्योंकि जो संकट है वो लॉन्ग टर्म संकट है, बहुत ही रहने वाला संकट है कि हम इस देश में अपने कामों की ऐसी तैयारी रखें, हमारी सेना की ऐसी तैयारी रखें जो और हमारे देश की एकता की तस्वीर ऐसी मजबूत रखे। ये सब बातें देख के हमारे देश के खिलाफ करने का ख्याल ही दुश्मन के मन में पैदा है। ये शक्ति तैयार करे, जैसे कि आज हमने देखा है कि रशिया के प्रति कितने ही देश कहो या दुश्मन कहो या नाराजगी कहो या कुछ भी कहो भय कहो जिसके देशों के मन में हो, या अमेरिका के प्रति जिसके देश के मन में हो, आज लड़ाई की बात नहीं हो रही, क्योंकि जान के कि लड़ाई शुरू हो जाए तो उसका असर क्या होगा। यही हवा हमारे देश में एक साल में नहीं, दो साल में नहीं, आगे पांच दस पंद्रह साल तैयारी जारी रखने पड़ेगी। अब ये काम एक जिम्मेदारी का काम समझदारी का काम, क्योंकि यह भी बोझा उठाना देश को होगा कि देश की दूसरे चीजों को भुगतना हो, या आप नहीं कह सकते कि देश की रक्षा की तैयारी भी जारी रखो, वही काम जारी रखो और हमारा जो प्रगति का काम है वही जैसा पहला चलता था उतना ही जारी रखो। दोनों कामों इतने तेजी से नहीं चलेंगे, एक तेजी से चलेगा थोड़ा कम तेजी से चलेगा, दोनों तो चला नहीं इसमें कोई शक नहीं। यह नहीं कह रहा कि हमें रक्षा की तैयारी करनी चाहिए, विकास का काम बंद करो, बिल्कुल गलत बात है। विकास का काम ही जारी रखना चाहिए, क्योंकि विकास का काम जारी रखने से रक्षा का काम भी जारी रहता है, वो तेज बनते जाता है।
देश की आर्थिक शक्ति बढ़े, यहाँ का औद्योगिक उत्पादन बढ़े, पैदावार बढ़े, उसकी शक्ति का असर होता है तो हमारी देश रक्षा की तैयारी के काम। तो ये दूर दृष्टि से हमें हमारे सवालों की तरफ देखना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये राज और आपकी कमेटी और आपकी जनता राष्ट्र के लिए बनता है, राष्ट्र के लिए संकट के आधार पर वो पहले से पहले देश को देखा बनानी और देशभक्ति के हवाले के लिए फिर से पाए गए। जय श्री कृष्ण।